پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو مشکل یہ ہے کہ جرنلسٹ کہتے ہیں کہ میں فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہوں. فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر صاف انکار کرتے ہیں اس سے کہ میں فلم والا ہوں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں. اور ادیب اور کرٹکس جو ہیں وہ مجھے ادب کے محل میں داخل ہونے سے روکتے ہیں.
یہ آواز ہے جانے مانے لیکھک, ساہتیکار اور پترکار خواجہ احمد عباس کی. اکثر جب ان سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہی بتائیے آپ ہیں کیا, تو وہ اکثر غالب کا ایک شعر سناتے تھے. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. اپنی 73 سال کی زندگی میں عباس نے 74 کتابیں لکھیں. اس کے علاوہ انہوں نے 300 کہانیاں بھی لکھیں, اور ان کی ایک کہانی ابابیل کو دنیا کی 100 سروشریشٹھ کہانیوں میں سے ایک مانا گیا. ڈاکٹر سیدہ سیدین حمید عباس کی بھتیجی ہیں اور مشہور لیکھکا ہونے کے ساتھ ساتھ یوجنا آیوگ کی سدسیہ بھی رہ چکی ہیں. ان کو عباس کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا تھا.
عباس صاحب ایک ہیومن ڈائنمو تھے, بہت چلبلی طبیعت تھی ان کی, اور بچوں کے ساتھ بچہ, اور جو بوڑھے ہیں ان کے ساتھ بردباری, اور سینس آف ہیومر. جلدی سے غصہ آ جاتا تھا, جلدی سے ٹھیک ہو جاتے تھے. اپنی کسی بھی ناکامی کو ناکامی نہیں مانتے تھے. پیسہ ہوتا نہیں تھا اور فلم بنانا تھا, اور اس کے لیے امید تھی اور آئیڈیل تھا. اتنے انٹیلیجنٹ اور اتنے ایموشنل انسان تھے کہ, اور اتنے ہی رحم دل تھے. آخر میں جا کے جب ان کی زندگی کے آخری دن تھے, تو ہوا یہ کہ وہ ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے, تو ایک خاتون آئیں اور ان کے پاؤں پہ ایسی انہوں نے اپنی لگیج کارٹ چلائی کہ ان کا پورا پاؤں جو تھا اس میں وہ, اس کی ہڈی ٹوٹ گئی, وہ گر پڑے, اور اس کے بعد وہ ریکوری نہیں کیے. مگر نہ انہوں نے ان کو پرسیو کیا, نہ انہوں نے ان سے کچھ کہا. مطلب یہ کہ ان میں جو کہتے ہیں نا کہ اتنی ٹالرنس تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں.
ڈاکٹر سیدہ کی عباس کی شروعاتی یادیں ممبئی اور دلی کی ہیں, جب وہ انہیں اپنی فلم کے پریمیئر کے بعد ریستوراں میں کھانا کھلانے لے جاتے تھے.
ہم لوگ بمبئی کی فلمی زندگی سے ہم بہت زیادہ متاثر تھے, اور اتنے ہی سختی سے ہم کو روکا جاتا تھا. مگر عباس صاحب سے اس پورے خاندان کو محبت بھی بہت تھی. تو ان کی جب فلم کوئی ریلیز ہوتی تھی تو ان کا ایک سٹینڈرڈ یہ تھا کہ وہ فلم جو پریمیئر شو میں ہم بچوں کو لے جائیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں کسی ریسٹوراں میں کھانا کھلائیں. یہ یاد جو تھی وہ ایسی وابستہ تھی, اور چپکے بامبے جانا اور ان سے چپکے چپکے کہنا کہ ہمیں شوٹنگ پہ لے جائیے, ہم مینا کماری کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دلیپ کمار کو دیکھیں گے, ہم راج کپور, نرگس, تو یہ سب ہماری جو دل کے سب خواہشات تھیں وہ ان کے سامنے. اور کیسے وہ میرے والد ایک طرح سے ان کو بہت آئیڈیلائز کرتے تھے, تھوڑا بہت ڈرتے بھی تھے ان سے, تو ان سے چھپ چھپ کے وہ ہم بچوں کی یہ سب ضدیں اور خواہشیں اور امیدیں پوری کرتے. جب ہم ان کی فلم دیکھتے تھے تو ہمیں اتنی ٹینشن ہوتی تھی, کیونکہ ہم دعائیں مانگتے تھے کہ یہ فلم ہٹ ہو جائے, اور ہٹ تو ان کی کوئی فلم ہوتی نہیں تھی. تو پردیسی میں لگا کہ کچھ ہے, تو بہت ہم خوش ہوئے. اور آخر میں جب فلم ان کی اینڈ ہوتی تھی تو دا اینڈ کے بدلے میں ہمیشہ وہ دا بگننگ لگاتے تھے, یہ ان کا ٹریڈ مارک تھا. تو ہمیں لگا کہ چلو اس فلم میں شاید ہمارے چاچا کو کچھ تھوڑا بہت سکسیس ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے گولچہ سنیما سے, اور پھر وہاں سے بس وہ موتی محل ہائی لائٹ آف آر لائف. عباس صاحب کے لیے وہ 2-3 ٹیبلز ریزرو ہوتی تھیں, اور اس میں ہم سب ہوتے تھے, اور کئی ان انوائٹیڈ مہمان بھی آ جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ سب کو نبھاتے تھے.
خواجہ احمد عباس نے اپنے چھاتر جیون میں ہی جواہر لال نہرو کو اپنا آدرش مان لیا تھا. ایک بار جب وہ علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے تب انہیں پتا چلا کہ نہرو کلکتہ میل سے علی گڑھ ہوتے ہوئے الہ آباد جا رہے ہیں.
ویل ڈیورنگ دیس علی گڑھ ڈیز آئی ریمبر بینگ گریٹلی امپریسڈ بائی دی پرسنالٹی آف جواہر لال نہرو.
مجھے یاد ہے اپنے چھاتر جیون میں میں نہرو سے کافی پربھاوت رہا کرتا تھا. جب ہمیں پتا چلا کہ ان کی ٹرین علی گڑھ سے ہو کر گزرے گی تو ہم نے طے کیا کہ ہم ایک اسٹیشن پہلے کھرجا چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے ڈبے میں بیٹھ کر علی گڑھ آئیں گے. راستے میں نہرو نے ہم سے پوچھا آپ کون سا وشے پڑھ رہے ہیں, ہم نے کہا اتہاس. نہرو کا جواب تھا اتہاس کو صرف پڑھیے نہیں, اس کو بنتے ہوئے دیکھیے بھی. جب ٹرین علی گڑھ کے باہری علاقے میں پہنچی تو میں نے ان کے سامنے اپنی آٹوگراف بک بڑھا دی, اس پر انہوں نے کچھ لکھا. तब तक स्टेशन आ गया। वो नेहरू के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। नेहरू ने कहा, तुम प्लेटफॉर्म पर नहीं उतर पाओगे, इसलिए दूसरी तरफ से उतरो। उतरने और रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नेहरू तमाम जय जयकार के बीच अब भी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े मुझे हाथ हिला रहे थे। जब मैंने अपनी ऑटोग्राफ बुक खोली तो उस पर लिखा था, लिव डेंजरसली, जवाहरलाल नेहरू।
ख्वाजा अहमद अब्बास ने राज कपूर के लिए कई फिल्में लिखी। इसकी शुरुआत 1951 में आवारा से हुई थी।
हमने दो फिल्में बनाई हैं अब्बास साहब पे। हमारे पास लकीली वो क्लिप मिल गया हमें कि जिसमें राज कपूर कहते हैं, अरे भाई हमारा क्या, बैठे हैं दोनों साथ साथ, वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई हमारा क्या, हम कोई आइडिया है, उल्टा सीधा अब्बास साहब को बता देते हैं और अब्बास साहब इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी बना देते हैं। इन्होंने आवारा में साथ काम करना शुरू किया, फिर श्री 420 बनाई, उसके बाद इन्होंने डायलॉग्स लिखे जागते रहो के, फिर उन्होंने मेरा नाम जोकर लिखी और उसके बाद मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई तो उसको मेकअप करने के लिए फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा बॉबी, जो कि पूरी तरह से सब कुछ हिट हो गई और उनका पूरा नुकसान था वो सब पूरा हो गया। पर अब्बास साहब को राज कपूर से ये शिकायत थी कि राज कपूर मेरी स्क्रिप्ट्स को वो कर देते हैं, उसको एंटरटेनमेंट में ला के, और उनका जो मैसेज है वो कम हो जाता है, तो वो मेरी स्क्रिप्ट के साथ बहुत टेम्पर करते हैं।
हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।
ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी बॉबी जबरदस्त हिट तो हुई, लेकिन अब्बास को राज कपूर द्वारा उनकी कहानी से की गई छेड़छाड़ पसंद नहीं आई।
उनका पूरा ये आइडिया था कि गरीब लड़की, अमीर लड़का, क्लास, ये वो, और उसमें वो पूरा जो उन्होंने एक प्रेमनाथ का जो एक उसमें है कि उनका वो लड़की का बाप जो था तो उसका भी एक वो मछेरा था गोवा का, राज कपूर ने उसको बहुत एक एंटरटेनमेंट में उसको बांध दिया, तो कभी वो उससे ज़्यादा खुश नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फेथफुल राज कपूर मुझसे आवारा में रहा, और उसके बाद राज कपूर ने इन्हिराफ करना शुरू कर दिया।
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
अमिताभ बच्चन को पहला ब्रेक देने का श्रेय भी ख्वाजा अहमद अब्बास को जाता है। उन्होंने फिल्म साथ हिंदुस्तानी में उन्हें एक मुस्लिम युवा का रोल दिया, और वो भी उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से पूछकर।
6 हिंदुस्तानी तो उनको मिल गए थे, अब 7वें की उनकी तलाश थी, और उन्होंने कुछ कुछ मजाज पे इस कैरेक्टर को बनाया था। उनका एक यंग असिस्टेंट था इंदर राज आनंद का बेटा, वो उन्होंने कहा, मामू जान मैं लेके आता हूँ, मेरा एक दोस्त है, लंबा सा एक लड़का आया तो कहा कि तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने कहा मेरा नाम अमिताभ है, अमिताभ और पूरा नाम क्या, उसका अमिताभ बच्चन। तो कहीं तो मेरे दोस्त हरिवंश राय बच्चन के तो बेटे नहीं हो। उसने कहा जी, बाप की मर्जी से आए हो। उसने कहा जी, मालूम है पेरेंट्स को। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले उनको लिखूंगा। तो फिर उन्होंने इनको हरिवंश राय जी को ख़त लिखा कि ऐसा ऐसा है, आप अगर इजाज़त दें। तो उन्होंने फिर तार से उनको जवाब दिया कि अगर आपके साथ काम कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते थे। उसने कहा मैं 1500 रुपये पे बैंड बॉक्स में कलकत्ते में करता था, मतलब अब नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं, मैं छोड़ के आ गया। अरे तुम छोड़ के आ गए, तुम्हें तो मैं पूरी फिल्म का सिर्फ 5000 दे सकता हूँ, मेरे पास इतना ही पैसा है। उन्होंने कहा आप मामू जान, आप जो भी दें मैं तैयार हूँ।
आगे की घटनाएं इतिहास हैं। अमिताभ बच्चन अब्बास के इस जेस्चर को कभी नहीं भूले। बाद में उन्होंने एक जगह 7 हिंदुस्तानी की शूटिंग को याद करते हुए कहा
कि ऐसी सोच थी कि जिस तरह से ये सेनानी लड़े होंगे उसी तरह हम लोग इस फिल्म को भी बनाएंगे। तो हम लोग सब यहाँ मुंबई के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में गए शूटिंग करने गोवा, 3rd क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ करके गए, और वहाँ पर जब भी अवसर मिला पैदल चलते थे हम लोग अपना सामान वामान ढो करके। रहने के कोई होटल नहीं होता था, जहाँ सर्किट हाउस छोटे छोटे होते थे, जहाँ बिजली पानी वगैरह नहीं होता था, वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल किस्म का एक वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था, वहीं पर पूरा कास्ट को सब एक साथ सोता था, चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप कैमरामैन हों, चाहे आप स्पॉट बॉय हों, सब एक साथ वहीं सोते थे। उस जमाने में होल्डऑल होता था, पता नहीं आप लोग होल्डऑल समझते हैं कि नहीं। आजकल पूरा बोरी बिस्तर जो है वो एक होल्डऑल में से बंद कर दिया जाता, एक तरफ तकिया होता था, फिर बाकी सब रजाई वगैरह उसमें गोल ऐसे बांध करके उसे ले जाया करते। सब लोग अपना होल्डऑल खोलते थे, उसी के अंदर सो जाते थे, सुबह उसको लपेटा और चल पड़े। कई बार मैं रात को जब सो रहा होता तो नींद उठती थी तो देखता था कि अब्बास साहब भी वहीं बगल में ही जमीन पर ही लेटे हुए हैं। और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो लालटेन लेकर के काम किया करते थे अगले दिन की डायलॉग्स लिखने के लिए।
अपने हीरो जवाहरलाल नेहरू से अब्बास की आखिरी मुलाकात नेहरू की मौत से कुछ दिनों पहले हुई। अब्बास की फिल्म शहर और सपना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब्बास उस पुरस्कार की राशि को अपनी यूनिट में बराबर बराबर बांटना चाहते थे। अब्बास के खास इसरार पर नेहरू ये इनाम बांटने के लिए तैयार हो गए।
जब उन्होंने शहर और सपना बनाई तो बिल्कुल शू स्ट्रिंग पे बनाई, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, किसी न किसी तरह से दोस्तों से मांग तांग के उन्होंने फिल्म बनाई और उसके बाद सम हाउ उसको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट फिल्म मिल गया। तो नेहरू से अपॉइंटमेंट लेके गए उनसे मिलने के लिए, तो नेहरू के डॉक्टर्स जो उन्होंने कहा था सिर्फ 15 मिनट देंगे, पूरे यूनिट को दे के गए। और ये था कि 25,000 रुपये मिले वो अवार्ड के, तो उन्होंने ये सोचा था कि पूरे यूनिट में चाहे वो स्पॉट बॉय हो चाहे वो हीरोइन हो सबको बराबर बराबर तकसीम कर देंगे। तो वो छोटे छोटे पर्सेस लाए थे नेहरू के हाथ से, तो नेहरू ने वो दिए और फिर कहा कि तुम्हारी फिल्म में कोई गाना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म में अली सरदार जाफरी की एक गज़ल है। ये मनमोहन कृष्ण जिनकी इतनी अच्छी आवाज़ थी, मनमोहन कृष्ण ने उसकी लाइनें गाईं और वो लाइनों पे जब वो गा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि सबको अंदाज़ा था कि अब नेहरू से फिर नहीं मिलेंगे। तो वो ये था कि वो जो खो जाएं तो खो जाएगी किस्मत सारी, वो जो मिल जाएं तो साथ अपने ज़माना होगा।
सीने से लगाना होगा प्यार को आज नई, वो जो खो जाए तो खो जाएगी दुनिया सारी, वो जो खो जाए तो खो जाएगी दुनिया सारी, वो जो मिल जाए तो साथ अपन जमाना होगा, वो जो मिल जाए तो।
इस गाने के बाद सब लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए। बाहर से नेहरू के डॉक्टर घड़ी दिखाकर इशारा कर रहे थे। अब्बास ने नेहरू से कहा, पंडित जी अब इजाजत दीजिए। नेहरू बोले, क्यों, मेरा तो किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। इस पर ख्वाजा अहमद अब्बास का जवाब था, तब समझ लीजिए कि हम लोग बहुत मसरूफ हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास ने ब्लिट्स के आखिरी पन्ने पर लिखे जाने वाले साप्ताहिक कॉलम लास्ट पेज से भी बहुत नाम कमाया। दुनिया और भारत के हर ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई जिसे पूरे भारत ने बहुत ध्यान से पढ़ा।
सबसे जो यूनिक बात थी कि उन्होंने 45 साल तक बिला नागा हर हफ्ते उन्होंने ब्लिट्स का वो लास्ट पेज लिखा, और हद ये थी कि ये कहते थे कि लोग ब्लिट्स लास्ट पेज से शुरू करते थे पढ़ना, और लास्ट पेज का अट्रैक्शन ये था कि उसमें एक पिनअप मॉडल की हमेशा तस्वीर होती थी, तो वो भी अट्रैक्शन होता था। तो पहले तो पिनअप मॉडल देखते थे, फिर अब्बास साहब का आर्टिकल पढ़ते थे। तो इस तरह से अब्बास साहब ने उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज, वो बहुत पॉपुलर हो गया था उनका। वही कॉलम उन्होंने हिंदी और उर्दू ब्लिट्स में भी आज़ाद कलम के नाम से लिखा। जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स होते थे उसको वो एक बहुत ही चैटी अंदाज में कि लोग उसको पढ़ भी लें और उसमें उनका जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज भी मिल जाए। और आखिरी जो उन्होंने लास्ट पेज लिखा वो था द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ ख्वाजा अहमद अब्बास। उसमें ये लिखा कि मेरे जब मैं मरूं तो मेरे कफन के बदले में मेरे सीने पे ब्लिट्स के लास्ट पेजेस के वरक हों।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।